अध्याय 9 के दूसरे श्लोक पे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की हम थोड़ी जो उनकी चर्चा कमेंट्री है उस पर कुछ थोड़ा चर्चा करेंगे। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम स्थर्म्यम सुसुखम कर्तमव्ययम। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि ये जो भक्ति है ये कोई सामान्य भक्ति का वर्णन भगवान नहीं करेंगे, अपितु अनन्य या केवल भक्ति का वर्णन करेंगे जो कि बहुत ही गुह्य है। और वो इसलिए है क्योंकि ये पवित्रम, ये बहुत शुद्ध करने वाली है। जितने भी भक्ति तरीके हैं जीव को शुद्ध करने के साधन हैं उसमें ये जो राज विद्या है, ये शुद्ध भक्ति का तरीका है, ये सब सर्वाधिक श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। और इसका एक और ये गुण बता रहे हैं कि ये भगवान को साक्षात दर्शन कराने में सक्षम है, जीव को सक्षम कर देगी कि भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो, प्रत्यक्षावगमम। साथ ही साथ धर्म का सार भी यही है, धर्मयम, और करने में बहुत आसान है। श्रवण कीर्तन इत्यादि जो शुद्ध भक्ति है वो बहुत आसान है करने के लिए, और साथ साथ ये शाश्वत है। जो भी हम भक्ति में करते हैं वो हमारा शाश्वत क्रेडिट बन जाता है, शाश्वत हमारे रूप से हमारे अकाउंट में चला जाता है। तो इस कारण से ये ज्ञान बहुत श्रेष्ठ है और भगवान इसको बता रहे हैं। तो इसमें एक बात आ रही है जहाँ शुरुआत करते हैं आचार्य कि बहुत तरह की भक्ति होती हैं, गुण विद्या भक्ति भी हम कहते हैं, बहुत सारी तरह की भक्ति होती हैं। तो उसमें इन सभी से श्रेष्ठ भक्ति का निरूपण भगवान इस नवे अध्याय में कर रहे हैं। और ये सबसे गुह्य ज्ञान है क्योंकि किसी भी रहस्य से अधिक रहस्यमय होता है भक्ति, और अन्य भक्तियों में भी केवला भक्ति, अनन्य भक्ति वो राजा है भक्ति भक्ति का। तो इसलिए राज गुह्यम। तो आप समझ रहे होंगे गुह्य भक्ति का ज्ञान अपने आप में गुह्य है, और उसमें भी केवल भक्ति, अनन्य भक्ति जिसमें केवल भगवान कृष्ण पे ही मन को केंद्रित किया जाता है ये सर्वाधिक गुह्य है। इसलिए भगवान इस ज्ञान को स्वयं दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि राज कोई है। दूसरा पॉइंट है पवित्रम उत्तमम, ये परम पवित्र है ज्ञान और व्यक्ति को उद्गत तमा अंधकार से ज्ञान की तरफ ले जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे बुरे से बुरे पाप का भी सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है, ये आत्मा के ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। श्रील मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि पाप राशि की जड़ को जड़ से उखाड़ देता है ये भक्ति का ज्ञान, और वो पाप राशि कैसी है जो कई कई हजारों जीवन में हमने जो पाप किए हैं, बहुत सारे जीवनों में जो भी पाप किया है उसको भी जड़ से उखाड़ देती है। क्योंकि पाप हमारे सूक्ष्म और स्थूल शरीर में निवास करते हैं, और साथ साथ जो अविद्या है जो कि पाप का कारण है वासना, इसको भी शुद्ध कर देती है शुद्ध भक्ति। तो यानी जो भक्ति है वो पापों को तो खत्म कर ही देती है, और केवल भक्ति की बात हो रही है, और साथ साथ पाप करने की वासना जो जो मूल रूप कारण है अविद्या उसका भी नाश कर देती है। अब प्रत्यक्षावगमम पे आचार्य बोल रहे हैं कोट करते हुए, भक्ति परेशानुभवो विरक्तिर अन्यत्र चैसा त्रिकक एक काला प्रपद्यमानस यथा अश्न तहस्युस तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायो नुघासम। भक्ति भगवान का साक्षात अनुभव और भगवान से संबंधित कार्यों के इतर, यानी कि जो वस्तुएं भगवान की सेवा में उपयोग नहीं होती हैं, जो विषय भगवान संबंधित नहीं है उनसे वैराग्य, ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं जो भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं। जिस प्रकार से सुख की अनुभूति, शरीर की पुष्टि और भूख का शमन होना, ये एक साथ होता है, हर कौर के साथ होता है जो व्यक्ति भोजन ग्रहण कर रहा होता है। ये 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक में बताते हैं। तो प्रत्यक्षावगमम पे ये आचार्य की टिप्पणी है, प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, भक्ति में प्रगति हो रही है इसका सर्टिफिकेट कोई दूसरा हमको नहीं देता है। जैसे कोई व्यक्ति भूखा हो और उसको स्वादिष्ट भोजन मिल जाए तो उसकी तुष्टि पुष्टि और भूख समाप्त हो गई है, इसका सर्टिफिकेट बाहर से नहीं देता है कोई व्यक्ति, व्यक्ति स्वयं अनुभव करता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इसमें कंटेक्स्ट में आचार्य बताते हैं कि इस भागवतम के श्लोक से हमें समझ में आना चाहिए कि जो भगवान का साक्षात्कार है वो निरंतर होता है, क्योंकि ये साक्षात्कार पूजा की विधि के अनुसार होता है। और अनन्य भक्ति का अर्थ ही है कि लगातार भक्त भगवान की सेवा में पूजा में लगा रहता है। अब क्योंकि लगातार लगा रहता है तो उसको लगातार ही तुष्टि पुष्टि और शुद्ध पाया, यानी कि भूख समाप्त होने का अनुभव होता रहता है, यानी साक्षात भगवान का अनुभव होता रहता है, भक्ति बढ़ती रहती है और जगत की वस्तुओं से वैराग्य लगातार ही हो रहता है। तो ये प्रत्यक्ष अनुभव भक्त को होता है शुद्ध भक्ति का आचरण करने से। अब दूसरा बात है, आप शब्द पे व्याख्या कर रहे हैं धर्मयम। भक्ति में व्यक्ति धर्म से च्युत नहीं होता, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि धर्म की अन्य कर्तव्यों का पालन करने में व्यक्ति असमर्थ हो जाए, लेकिन वो सारे धर्म, प्लीज ध्यान दीजिएगा, वो सारे धर्म का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है भक्ति करके। फिर से मैं इस बात को बोलूंगा, व्यक्ति धर्मों का आचरण कर रहा है, विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं, तो वो जो धर्म है उनका आचरण करने में कहीं त्रुटि हो सकती है, लेकिन भक्ति करता है तो उन धर्मों में जो त्रुटियां होती हैं वो भी, और धर्म मान लीजिए पूरा नहीं कर पाया और कोई धर्म ना भी कर पाया, तो उस भक्ति से उस धर्म की पूरी हो पूर्ति हो जाती है। और संबंध में श्री नारद मुनि का स्टेटमेंट को कोट करते हैं, यथा तरोर्मूल निषेचनेना तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखः प्राणोपहारा चयतेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरणमच्युतेज्य। जिस प्रकार से आप सब लोग इस उदाहरण को समझते हैं, जिस प्रकार से पेड़ की जड़ में पानी देने से पत्तों को शाखाओं को अपने आप ही मिल जाता है, जिस प्रकार से पेट पे खाना देने से सारे इंद्रियों को अंगों को भोजन का रस मिल जाता है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से सभी देवताओं को अपने आप संतुष्टि प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वो सब भगवान श्री कृष्ण के अंग हैं। अच्छा, एक और पॉइंट है, सुसुखम के बारे में बात हो रही है कि कर्म और ज्ञान से की अपेक्षा, या उनसे भी कह सकते हैं इतर, उनसे अलग रूप से भक्ति करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि भक्ति में शरीर को, मन को और वाणी को वैराग्य के साधनों के द्वारा बहुत अधिक बहुत अधिक दुख नहीं दिया जाता है। भगवान के भक्त सुंदर सुंदर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, सुंदर विग्रहों का दर्शन कर सकते हैं, सुंदर कथा सुन सकते हैं, सुंदर कीर्तन सुन सकते हैं, इंद्रियों को सुख देने वाली चीजें भक्त करते हैं, बस केवल भगवत संबंधी होती हैं, इसलिए सुसुखम होता है। और भक्ति का सर्वश्रेष्ठ जो तरीका है वह है श्रवण और कीर्तन। तो ये तो व्यक्ति कोई भी कहीं कर सकता है, किसके पास भी कान है और वाणी है तो भगवान के बारे में सुन सकता है, उस वाणी को रिपीट कर सकता है। और अव्ययम पे बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो अनन्य भक्ति है ये गुणों से परे है, इस कारण से शाश्वत है, जबकि कर्म और ज्ञान ये शाश्वत नहीं है। कर्म का पर्यावसान तब आत्मज्ञान पे होता है, जब व्यक्ति कर्म योग करता है तो उसके द्वारा उसको ये अनुभूति होती है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, तब वो ज्ञान का अधिकारी बनता है तो कर्म को त्याग देता है। और ज्ञान योगी भी केवल मुक्ति पर्यंत ही प्रयास करते हैं, ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, लेकिन भक्ति मुक्ति के बाद भी चलती है, तो इसलिए ये शाश्वत पद है, शाश्वत प्रोसेस है। श्रील बलदेव विद्याभूषण की कमेंट्री से कुछ चीज़ें हम बताएंगे जो प्रभुपाद जी ने मुख्यतः श्रील बलदेव विद्याभूषण की ही कमेंट्री को उसमें रखा है, एक दो चीज़ें नहीं जो उसमें रखी गई उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो उसमें बता रहे हैं श्रील बलदेव विद्याभूषण की राज विद्या राजगुहिम का अर्थ है कि ये जो ज्ञान है ये राजाओं का ज्ञान है, राजाओं के पास होता है, बहुत गुह्य ज्ञान है, और ये ज्ञान राजा जैसे लोगों के लिए है जो कि बहुत उदार हैं और बहुत कृपालु होते हैं, और वो लोग स्वर्ग को भी तुच्छ मानते हैं। ऐसे लोगों के पास ये भक्ति का अनन्य भक्ति का ज्ञान होता है। ये ज्ञान उन लोगों के पास नहीं होता है जो कृपण हृदय के होते हैं, इनके हृदय बहुत संकुचित होता है और वो देवताओं की उपासना करके जल्दी से कुछ पुत्र या फिर धन की प्राप्ति करना चाहते हैं। और इस पे वो बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से राजा अपना जो खजाना है उसको छुपा के नहीं रखता, लेकिन अपने मंत्रों को छुपा के रखता है, बावजूद इसके कि राजा बड़ा कृपालु होता है, दयालु होता है, उसी प्रकार से भक्त लोग बड़े दयालु होते हैं, लेकिन उनको इस ज्ञान को बहुत संभाल के रखना चाहिए, बावजूद उसके कि वो अन्य ज्ञानों अन्य किस अन्य ज्ञान को बड़ी आसानी से दूसरों को देते हैं। तो ये छोटा सा कमेंट था, इसको मैंने प्रस्तुत किया। तो इसको 9.2 का एक्स्ट्रा एडिड कमेंट्री में आप कमेंट्स में आप छोड़ सकते सुन सकते हैं। हरे कृष्णा।